ओम शांति। विदेश के एक लेखक ने अपने जीवन का एक अनुभव लिखा है। उसमें उसने लिखा कि एक बहुत सर्द रात थी, लगभग 12 बज गए थे रात को, तापमान 0 डिग्री था और बहुत ठंड थी, और मैं कार से अपने घर की ओर जा रहा था। दफ्तर में कुछ कारण से देरी हो गई थी और कार से जा रहा था, और कार चलाते चलाते भी इतनी ठंड लग रही थी कि ढूंढ रहा था कि कहां से हवा आ रही है, पर सुराग मिला नहीं। जैसे तैसे घर पहुंचा और गेट के सामने जाकर हॉर्न बजाया ताकि घर से कोई आए और दरवाजा खोले। आवाज भी लगाई पर कोई नहीं आया, शायद सो गए होंगे घर वाले इतने रात तक। तो सोचता है कि खुद ही उठ के दरवाजा भी खोलना चाहिए, और खुद ही उठता है, निकलता है बाहर तो इतनी ठंड लगती है उसको। जैकेट पहना हुआ है, स्वेटर जैकेट सब कुछ पहना हुआ है और गेट खोलता है और अपनी कार अंदर लगाता है, और जब पीछे आता है कार गेट बंद करने के लिए, तो देखता है वहां पर फुटपाथ पर एक छोटा सा लड़का, 7-8 साल का, एक अधफटी चादर लेकर सो रहा है, और उसके साथ एक कुत्ता भी है। और उसको देखकर वो महसूस करने की कोशिश करता है, इसके पास कपड़े भी नहीं है, एक बनियान और इतनी छोटी चादर, तो उसको कितनी सर्द ठंड लग रही होगी। ये सोच के ही उसको एकदम से कुछ हो जाता है, और वो देखते रहता है उसको, और देखते देखते वो जो कुत्ता होता है वहां से निकलता है और वो कार के पीछे आता है और कार के नीचे सो जाता है। तो उसको लगता है कि शायद कार का इंजन की गर्माहट के लिए वो कुत्ता आ गया है, तो उसको निकालता भी नहीं है, वही सोने देता है उसको। और वो लड़के को देखता है तो उसको कुछ अंदर बहुत हलचल होती है कि इतनी सर्दी में ये बच्चा कैसा सो रहा है यहाँ पे, उसके पास कुछ भी नहीं है। और फिर वो अपने पीछे के दरवाजे से चाबी होती है, खोलता है, अपने घर में जाता है, देखता है सब सो रहे हैं। अपने कमरे में जाता है तो कमरे में हीटर, रजाई, चादर, ब्लैंकेट, ये सब लेता है और बैठता है और सोचने लगता है कि हम भी कितने स्वार्थी हैं, इतना सारा जमा करके रखा है, और वो बच्चा देखो, एक चादर है वो भी एक कुत्ते के साथ में बांटकर सो रहा है। तो उसको बहुत बुरा लगता है, और ये भी लगता है कि क्या करना चाहिए, मैंने कुछ मैं कर सकता हूं उस बच्चे के लिए। तो ये सोचते 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 उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है। और सुबह जब उठता है तो लेखक लिखता है, मैंने देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई है, और वो देखता है, पूछता है क्या हुआ। तो कोई कहता है, एक वो जो चाय बनाने वाला लड़का था ना, 7-8 साल का, रात में ठंड लग गई और मर गया बाहर। तो उसको इतना बुरा लगता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि, सोचता है अंदर ही अंदर कि मैं भी तो कुछ कर सकता था इसके लिए। और वो देखता है वो कुत्ता जो था, और उसके मरने से किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ा है, चाय की टपरी चलाने वाला वो छोटा सा लड़का अनाथ, और वो कुत्ता खाली वहां है जैसे कि उसको उठाने की कोशिश कर रहा है अपने दोस्त को, ये शायद सोच रहा है कि ये सो रहा है, और बच्चा तो मर चुका है। तो वो लेखक लिखता है और उसको बहुत दुख होता है कि मैं भी तो कुछ कर सकता था, अगर मैंने उसको कुछ दिया होता या घर के अंदर ले लिया होता तो शायद वो नहीं मरा होता, और हमने कितने फालतू अपने कमरों में अलमारियों में भर भर के ब्लैंकेट्स, कपड़े, स्वेटर, शॉल, कंबल, कारपेट, इतना सारा कुछ भर के रखा है, दो दो हीटर, उसमें से थोड़ा भी मैंने उस बच्चे को दे दिया होता या उसकी मदद करती होती तो कितना अच्छा होता। और फिर उसने लास्ट में अपनी इस कहानी में लिखा जीवन की, जैसे आह्वान किया, अपने बारे में तो नहीं लिखा, आह्वान किया मनुष्य जाति को कि जितना हो सके हमारे पास जो कुछ सामान है और जो कि फालतू पड़ा हुआ है और जो भी एक्स्ट्रा है वो हम दूसरों को दे, या किसी बच्चे को शिक्षित करे, या किसी की ऐसी मदद कर दे कि जिसका जीवन सवर जाए। ऐसी कुछ दो तीन बातें उसने उसमें लिखी। तो ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सत्य घटना है, उसने अपने जीवन कहानी लिखी है, ये सत्य घटना विदेश की जहां पर बहुत ठंड होती है, या ऐसा ही कोई आबू जैसा पहाड़ी इलाका होगा जैसी ठंड आज यहाँ है, मर गए। हाँ, तो यहां पर भी होता है उधर भी होता है। तो उसने एक ही निष्कर्ष निकाला कि कितनी वस्तुएं हमारे पास है, कितना वैभव में हम जीते हैं और केवल अपने लिए जीते हैं, क्यों ना हम थोड़ा सा अपने इस दायरे से बाहर निकलकर किसी अकिंचन, किसी गरीब, किसी निरीह असहाय व्यक्ति की मदद करें, हमारे पास जो भी हो वो सारा सफल हो जाए, यही भाव उसने लिखा। तो लास्ट संडे के लास्ट संडे की जो मुरली थी पवित्रता की, उसका जो दूसरा भाग था ब्रह्मा बाप समान ब्रह्माचारी कदम पर कदम रखो वाला, वो अभी भी रह गया था, तो वो आज हम देखेंगे। तो उसमें टोटल 7 पैराग्राफ थे और उसमें से जो चौथा था वो था ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ क्या किया, सफल किया। 3 बातें मुख्य रूप से, संकल्प, समय, शरीर। सफल करना अर्थात श्रेष्ठ तरफ लगाना, सफल करना अर्थात यूटिलाइज इन अ वर्थवाइल वे, सफल करना, ये वास्तव में हिंदी भाषा में ऐसा कोई प्रयोग है ही नहीं, वो केवल बाबा ने ही प्रयोग किया है। सफल अर्थात संसार में सक्सेस, यहां सफल अर्थात भोजन को सफल करो। कोई बाहर का सुने तो उसको समझ में नहीं आएगा, भोजन को सफल करो अर्थात करो क्या इसका मतलब सफलता प्राप्त करो भोजन खाने में या क्या करने में ये शब्द हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये बाबा का नवरचित शब्द है सफल करो। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म अर्थात नए शब्द का आविष्कार करना और उनका प्रयोग करना, तो ये नियोलॉजिज्म है। तो बाबा ने कहा है सब कुछ सफल करो, जैसे ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन तक भी पत्र व्यवहार किया, मुरली चलाई, सब कुछ किया। उस दिन 9 बजे से लेके तो 12 बजे तक सबके उत्तर दिए प्रश्नों के, फिर दादी प्रकाशमणि को लेकर सब कुछ दिखाया, यज्ञ की एक एक वस्तु दिखाई, शाम को भी जल्दी क्लास चालू किया, 8:30 बजे 9 बजे पूरा कर दिया, और फिर कमरे में गए और पखेरू उड़ गया। तो अंतिम श्वास तक, अंतिम दिन तक, अंतिम घड़ी तक जो कुछ भी था वो सब क्या किया, सफल किया। तो यहां पे स्थूल भी और सूक्ष्म भी, जैसे उस लेखक ने अपने अनुभव में लिखा, अब अपने ही घर में और अपने कमरे में देखना कौन सी ऐसी फालतू चीजें पड़ी हुई है व्यर्थ की चीजें पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हुई है जो हम कभी प्रयोग नहीं करते, और उसके वजह से किसी सेवाधारी की मदद हो सकती है। यहां इतने सेवाधारी आते हैं, बेचारों के पास कुछ नहीं रहता है, एक ही कुर्ता धो धो के चलाते रहते हैं एक हफ्ता तक, और हमारी अलमारियों में 10-10 कुर्ते, 10-10 स्वेटर, 10-10 शॉल, 10-10 जूते पड़े हुए हैं, जो मिलते ही रहते हैं, मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, दान आते ही रहता है। ब्राह्मणों को बहुत दान आते रहता है सारे सेवा केंद्रों से और यहां वहां से। एक मफलर कम हो गया तो बेचारे का फायदा हो जाएगा। और यहां नहीं, सेंटरों की बात देखो, सेंटरों की बात, वहां पर भी ढेर सारे कुमार होते हैं, उनके पास भी कुछ नहीं होता है, बड़े को गरीब होते हैं। तो एक तो है आर्थिक मदद भी की जा सकती है, इस रीति से नहीं कि हम मदद कर रहे हैं बस हमारे पास है हमने दे दी और भूल गए, इसलिए नहीं कि तुम वापस देना। हाँ तो जो कुछ हमारे पास है, चाहे स्थूल चीजें हैं, स्थूल वस्तुएं हैं, ढेर सारी वस्तु पैक करके कबर्ड में रखी हुई है जिसको हमें भी पता नहीं वो है करके, भूल ही गए हम, पर रखी हुई है तो सफल करना अर्थात स्थूल को सफल करना, स्थूल वस्तुओं को सफल करना, जूते हैं, शॉल है, ब्लैंकेट है, कपड़े हैं, सारी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब अगर किसी को हम दे सके। कन्याएं होती है, बड़ी गरीब होती है कुछ कुछ कन्याएं, कुछ नहीं होता है उनके पास, इस भाव से नहीं कि हम मदद कर रहे हैं, प्रेम से कि आप यूज करो। तो एक तो स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म सफल करना। सूक्ष्म में आएंगे संकल्प, श्वास, टाइम, टाइम वेस्ट ना हो कहीं पर भी, हमारा टाइम वेस्ट ना हो दिनचर्या में, जो भी समय हो सारा ज्ञान योग और सेवार्थ ही लगे बस, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। तो ये है बाप समान बनना। तो वो जो मुरली थी, कोई एक मुरली नहीं थी, कई मुरलियों का संकलन, कई मुरलियों से चुने हुए महावाक्य, उसमें 7 पैराग्राफ थे, 7 बातें उसमें से हम निकालेंगे। सबसे पहली बात थी ब्रह्माचारी बनो। सबसे पहली बात ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, ब्रह्मा सा आचरण करने वाले, ब्रह्माचर्य, चर्या अर्थात दिनचर्या, रात्रिचर्या, ब्रह्मचर्य, ब्रह्माचर्य, चर्य, शैली, लाइफस्टाइल, मोड ऑफ लिविंग, जो भी कहो उसको, वो है चर्य। तो ब्रह्माचर्य अर्थात फॉलो ब्रह्मा, ब्रह्मा को फॉलो करना। बाबा ने हमेशा फॉलो ही शब्द कहा है, उसका हिंदी अनुवाद कभी नहीं किया। क्यों? शोभता नहीं, वो तो आप सुन रहे हैं इसके लिए आपको उसकी आदत पड़ गई। फॉलो फादर, फॉलो शब्द के 3 अर्थ है हिंदी में, फॉलो के 3 अर्थ है, 3 हो सकते हैं, अर्थ है नहीं, 3 हो सकते हैं। एक है अनुकरण, अनुकरण अर्थात कॉपी करना, उसने वैसा किया हम भी वैसा करें, नकल करना किसी की, उसके लिए भी अकल चाहिए वो अलग बात है, तो नकल, अनुकरण। दूसरा है अनुगमन, अनुगमन अर्थात उसके चलना, गमन अर्थात चलना, विहार करना, तो गमन करना अर्थात फुटस्टेप पर चलना, उसने जिस मार्ग पर वो गया उसके पीछे पीछे चलना, अनुगमन। तीसरा है अनुसरण, अनुसरण अर्थात उसने जिस तरह का आचरण किया या जो कार्य किया वैसे ही कार्य करना। तो अनुकरण, अनुगमन, अनुसरण, ये 3 अर्थ है फॉलो के। तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर करना अर्थात ब्रह्माचारी बनना, अर्थात उसका जो आचरण था, उसका जो स्वभाव संस्कार था, वैसा ही स्वभाव संस्कार हमारा हो। इस स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लाओ। क्या लाया, क्या कहा बाबा ने, अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की न्यूनेस, बाप समान की रचनात्मकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये बाप समान क्रिएटिविटी है। अब समान मन, अब तक मनुष्य समान बने, अब तक देवता समान बने, अब तक संतों के समान बने, अभी बाप समान बनने की नवीनता लाओ। और उसमें और एक बात कही, जैसे बाप का स्वभाव था, अंत तक भी था, निरंकारी, निराकारी और निर्विकारी। ये तीन वरदान अमृत वेला रोज लेना है, क्योंकि ये सर्वोच्च अवस्था है। और इसको अगर डिवाइड करना रहा तो जैसे मेडिटेशन हॉल में एक जगह शिव बाबा दिखाते हैं, एक जगह ब्रह्मा है, एक जगह मम्मा। अगर तीनों से एक एक लेना है तो ब्रह्मा से निरंकारी भव का वरदान, शिव बाबा से निराकारी भव का वरदान और मम्मा से निर्विकारी भव का वरदान। क्योंकि बाबा ने मम्मा के लिए कहा है कभी, शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने मम्मा के लिए कभी कहा था कि मम्मा वो आत्मा है कि जिसके लिए किसी विकारी को भी आज तक विकार का संकल्प नहीं आया होगा। किसी पतित से पतित आत्मा को भी मम्मा के लिए विकारी संकल्प नहीं आएगा। वो हाई लेवल की प्यूरिटी मम्मा की प्यूरिटी है। निर्विकारी भव, निराकारी, कैसा निराकारी, जैसे वो है, अभोक्ता, अकर्ता, असोचता, वो एकदम निराकार है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, निर्मोह है, वैसा निराकारी, अभूल है, परफेक्ट है, कर्मातीत है, अमर्त्य है, अजन्मा है, वैसा। और ब्रह्मा से निरंकारी। इस यज्ञ में चलने की ट्रिक, तिकड़म, गिमिक, युक्ति या क्यों हो, सलीका या विधि या मेथड या मेथडोलॉजी या सहज मार्ग, एक ही है, कौन सा, निर अहंकारी बनकर चलना। जो जितना निरहंकारी है वो उतना सेफ है, जो जितना अपने अहंकार में चल रहा है उसके लिए पूरा मार्ग कठिन है। हाँ, पर उसकी विधि है निराकारी, बिना निराकारी के तो निरंकारी कोई बन ही नहीं सकता। हाँ तो सबसे पहली बात है ब्रह्मा की, ब्रह्माचारी बनना, जो उसका आचरण वैसा हमारा आचरण, जो उसका स्वभाव वो हमारा स्वभाव, जैसे उसके संस्कार हमारे संस्कार, और जैसे वो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी था वैसे बनना। तो ये सबसे पहली बात थी, फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड, पवित्रता का व्रत। दूसरा, पवित्रता का व्रत, उसमें भी और चार पांच बातें थी। ब्रह्मा के बोल कैसे हैं, तुम्हारे बोल में क्या हो, प्यूरिटी के प्रकंपन, तुम्हारे संकल्प में क्या हो, प्यूरिटी के, तुम्हारे बोल में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस, तुम्हारे संकल्प में प्यूरिटी की शक्ति समाई हो, तुम्हारे कर्म में जैसे ब्रह्मा पुरुषोत्तम था उसका हर कर्म साधारण होते हुए भी, और तुम्हारे चेहरे में और तुम्हारे चलन में हर्ष, तुम्हारे चेहरे में क्या हो, वो पहले ही इसमें आ गया, वो चेहरे में प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्राप्ति नहीं, तुम्हारा चेहरा प्रत्यक्ष प्रमाण हो, ऐसा कुछ है उसमें। तो पांचों ही चीजें में प्यूरिटी हो, कहने का भाव, संकल्प, बोल, कर्म, चेहरा और चलन, प्यूरिटी का व्रत। बाबा ने क्या कहा, प्यूरिटी का व्रत धारण करो, इसको व्रत बना लो। व्रत अर्थात एक बार व्रत ले लिया तो उसको तोड़ते नहीं है। वो भीष्म पितामह ने एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली बस, कितनी सारी चीजें आई और उसको तोड़ने में मजबूर किया पर वो नहीं माना, वो नहीं, और वो सारा महाभारत का एक कारण तो उसकी प्रतिज्ञा ही थी, क्योंकि प्रतिज्ञा ही ऐसी ले ली कि जो भी सिंहासन पर देखेगा, बैठेगा, मैं उस पर अपने पिता की छवि देखूंगा, और जो बैठा वो योग्य ही नहीं था धृतराष्ट्र, तो फिर भी देखना उसको अभी पड़ा, क्योंकि उसको अधर्म के साथ युद्ध करना, अधर्म के पक्ष में युद्ध करना पड़ा, जबकि उसकी सारी निष्ठा आशीर्वाद पांडवों के पक्ष में थे, परंतु क्या करता वो, परंतु प्रतिज्ञा कर ली ना तो बस कर ली, जो कर लिया कर लिया, एक बार प्रतिज्ञा ले ली प्यूरिटी की तो फिर अब हिलना नहीं, डुलना नहीं, अब असमंजस दुविधा की अवस्था में नहीं आना। और हमारी प्यूरिटी का संबंध उससे भी नहीं है, विनाश से। जैसे कोई एक युगल था, वो तो उसने कहा था ना एक साल तक पवित्र था, फिर तो विनाश हो जाएगा। फिर पत्नी ने कहा एक साल तो हो गया, अभी अभी पूरा करो। एक भाई ने हिसाब लगाया, हिसाब विनाश का तो ये है, इतना टाइम बचा है तो सेकंड पॉइंट है प्यूरिटी का व्रत। फिर उसके बाद में तीसरा, थर्ड पॉइंट, इसमें बाबा ने कहा मुरलीधर, बाप से, बाबा का प्यार मुरलीधर से है, तो तुम्हारा प्यार मुरली से होना चाहिए। और मुरली से प्यार अर्थात क्या सुनीता बहन, मुरली से प्यार की परिभाषा क्या है? सुनना और लिखना, मुरली को क्या खा लेना मुरली से प्यार की परिभाषा क्या है? समा लेना, और क्या करना, उसके एक एक अक्षर से प्रीत। मुरली से प्यार अर्थात स्वरूप बनना, मुरली से प्यार अर्थात मुरली, नहीं वो नहीं, मुरली का बताओ अभी। हाँ, उसको देखना मन की आंखों से, मानस चित्र बनाना। मुरली से प्यार अर्थात उसको याद रखना, जो चीज से प्यार होता है वो याद रखी जाती है। हम कहे हमारा प्यार बहुत है पर हमको याद कुछ भी नहीं है, तो कौन मानेगा प्यार है? झूठा प्यार, ढोंग प्यार बहुत है पर याद कुछ भी नहीं है। कोई किसी से बहुत प्यार है और उसको पूछो उसका नाम क्या है, मैं तो नाम ही भूल गया उसका, तुम्हारा इतना प्यार है ना उसके लिए संसार छोड़ के आ रहे हो, बोलते उसका याद ही नहीं, नाम ही याद नहीं, क्या करूं तो कौन मानेगा प्यार है? मजनू कहे कि मुझे तो याद ही नहीं आ रहा क्या था, और लैला थी, क्या था क्या था तो मुरली से प्यार अर्थात मुरली याद रखना, मुरली से प्यार अर्थात मुरली से प्यार अर्थात पवित्र बहन, मुरली से प्यार की क्या परिभाषा है? मुरली मुरली को एसिमिलेशन, डाइजेस्ट कर लेना, हजम कर लेना पूरा, धारण समाना, स्वरूप बनना, सब एक ही हो गया। और कुछ नया, कुछ मुरली से प्यार की कोई नई परिभाषा, उसमें नवीनता लाना, अपने मुरली से जीवन को शो करना। हाँ वही ना, अपने जीवन से मुरली को शो करना। और भी कोई नया परिभाषा, नई परिभाषा? हर मुरली नई लगे, उसमें नवीनता है, बहुत नवीनता लगी उसमें। आज की मुरली में बड़ा अच्छा वाक्य है, यदि तुम ज्ञान योग में पूरा हो तो तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं कर सकेगा। कैसे नए नए वाक्य थे, बस इतना एक पक्का कर लो कि अपने मैं आत्मा हूं और बाकी सब छोड़ दो, बस इतना एक पक्का कर लो। कल की मुरली था, ऐसा टीचर कभी देखा? कल की इसमें था ना, जो आज भी बोला कि टीचर है तो जो जैसा है वैसा बनाएगा, वो टीचर है तो तुमको भी टीचर बनाता है। तो रोज की मुरली में नवीनता ढूंढना कि ये तो एकदम नई बात बोल दी, ये तो आज तक कभी बोला ही नहीं था, कितनी नई बात है, ऐसा लगना चाहिए। या ऐसा लगता है वही 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 बाप आए हैं तुमको ले जाने, पतित से पावन बनो, ये करो वो करो, दिव्य गुण धारण करो, ये भी करो, अपनी चेकिंग भी करो, किसी को दुख ना दो, काम मां शत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, बाप आए हैं, परमधाम वापस जाना है, फिर तुमको सतयुग में आना है, देवी देवताओं जैसा बनना है, तुमको सेवा भी करनी है, याद प्यार नमस्ते, ये ऐसा कहां मुरली चालू हुई और हो गई, होने के बाद अगर तुरंत पूछा जाए किसी को क्या नया था तुरंत बताओ, शायद ही कुछ था, सब वही वही तो था मुरली से प्यार, और उसमें और एक तीसरे पैराग्राफ में और एक बातें थी, संकल्प बोल और कर्म की अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अर्थात अलाइनमेंट समान तो नहीं था, परंतु जो बोलो वो करो, जो करो जो सोचो वो बोलो, और जो बोलो वो करो, ये तीन, ये अलाइनमेंट जरूरी है। ये तीनों एक टुकड़े टुकड़ा इधर उधर ना भटकते हो, एक ही। आज बोला है तुम्हारी बुद्धि को ठिकाना कहां मिला है, तुम्हारे बुद्धि का भटकना बंद हो गया है, संसार की आत्माओं की बुद्धि भटक रही है, तुम्हारी बुद्धि को एक ठिकाना मिला है, तुम एक बाप की याद में टिक जाओ, कहीं भटको मत अब। तो यहां पर भटकना नहीं, इनका भी भटकना होता है। संकल्प कुछ और बोल रहा है, बोल कुछ और रहे, और कर तो तीसरा ही रहे, परिणाम तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कुछ और ही है परिणाम। मिसअलाइनमेंट, डिसअलाइनमेंट, ये पूरा कंप्लीट मिसअलाइनमेंट हो गया है इसका। ये यहां जा रहा है, ये वहां भाग रहा है, वो वहां भाग रहा है। एक मराठी संत कहता है, बोले तैसा साले त्याची वंदना पाऊले, अंगे झाड़ी ना अंगन त्याचे दायित्व करी ना। वो कहता है कि ऐसा कोई मुझे मिल जाए, बोले तैसा चालील, जो बोलता है वो करता है, उसका जो आंगन होगा ना वो मैं अपने शरीर का झाड़ू बना के उसके आंगन को झाड़ूंगा, पर ऐसा कहीं मुझे मिल ही नहीं रहा है। अंगे झाड़ी ना अंगन त्याचे दायित्व करी ना, उसका दास बन जाऊंगा अगर तुम मुझे ऐसा कोई दिखा दो तो। जो वो करता है कथनी करनी समान, और जितनी जिसकी कथनी करनी समान नहीं है वो सुशील भाई कौन है, खौफ ना, कौन सी मुरली है, कौन सी मुरली है, 69 की, 69 की अव्यक्त वाणी, जिनका अंदर बाहर साफ नहीं है वो खौफनाक, ब्रैकेट में जानवर। खौफनाक जानवर ही होते ना। तो तीसरी बात है मुरली से प्यार। तो मुरली के प्यार क्या है, आज इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना है सबने। मुरली से प्यार अर्थात क्या, वही घिसी पिटी डेफिनेशन नहीं बताओ मुरली से प्यार वाली, कुछ और बताओ नया। एक एक जितनी सबने बताई उसमें एक ही आता है, स्वरूप बनना, वो हो गया, वो हो गया। दूसरा बताओ, जैसे आपने नया बताया कि नवीनता ढूंढना, ये है मुरली से प्यार। ये दो हो गए बस, जितनी चर्चा हुई उसमें से दो ही पॉइंट है, अभी आगे की निकालना, वो सब एक में आ गया। नया कुछ वो लिखना। तो ठीक है, मुरली से प्रेम अर्थात क्या, वो हो गया सब एक में। तो ये थी तीसरी बात। चौथी बात से हमने क्लास की शुरुआत की थी, क्या करना है, ब्रह्मा वा प्रसाद, सब कुछ सफल करना, यूटिलाइज करना प्रॉपर वे में, कुछ भी वेस्ट ना जाए। पांचवा पॉइंट, इकोनॉमी के अवतार। एक स्लोगन ब्रह्मा बाप का था, कौन सा, कम खर्च बाला नशीन। कम से कम खर्च हो तो हर वस्तु, हर कार्य कैसा हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। तो संकल्प कम परंतु प्रभावशाली शक्तिशाली, बोल कर्म परंतु स्पष्टीकरण उसमें सब कुछ समाया हुआ हो। तो ये जो बचत है, बचत की स्कीम, ब्राह्मण जीवन में बचत किस किस की करनी है, इस पर भी कभी क्लास हुआ था बहुत पहले, बहुत सारी बातें थी उसमें, स्थूल से लेके तो सूक्ष्म तक सारी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पानी, ट्रांसपोर्ट, भोजन, संकल्प, बोल, कर्म और पर्यावरण, इसको भी वेस्ट नहीं करना है, स्वच्छता, और बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो वो सब कम हो, कहीं वेस्ट ना हो कोई भी चीज, सफल करना है उसको, वेस्ट को बेस्ट बनाना है। तो ये था पांचवा। फिर छठवा था, इसमें दो बातें थी, एक तो ब्रह्मा बाप जैसे एक बाप ना दूसरा ना कोई, वो वाला था, और दूसरा था दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प किसका, कि हम दिल शिकस्त नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे। मूड, वो वाला भी था कि मूड ऑफ ना हो, कंफ्यूज ना हो, दिल शिकस्त नहीं होना, इसका दृढ़ संकल्प करना है। और माया चाहे कैसी भी बड़ी आए, कितनी भी बड़ी आए, हिमालय जैसी आए, टकराना नहीं है, उड़ जाना है, सोचना ही नहीं है, और हाँ उसको छोड़ दो, उड़ के चले जाओ ऊपर। ये जो टकराता है, ये अहंकार टकराता है वास्तव में, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों कहा, उसको क्या अधिकार है ये कहने का। इसके लिए कहा ना, इस यज्ञ में चलने की एक ही युक्ति है, निरंकारिता। जो जितना निरंकारी है उसके लिए मार्ग बहुत सहज है, और जितना अकड़ के जो खड़ा है उसके लिए तो कदम कदम पर ये यज्ञ उसके लिए एक कटीला जंगल है, काटे ही काटे है। जहां पर जो निरंकारी नहीं है उसके लिए, एक व्यक्ति होता है वो एक साधु के योगी के पास जाता है, वो कहता है मैं तो अधम प्राणी हूं, पापी, ये वो बहुत सारी बातें बोलता है। तो मैं आपकी शरण में आया हूं, तो वो कहता है ऐसे कोई वस्तु को लेके आओ जो तुमसे भी अधम है, तुमसे भी नीचे है। बोलते अरे बाप रे, ऐसी कौन सी वस्तु है? तो वो ढूंढता है, बहुत सोचता है, कुछ भी नहीं मिलता है। और फिर सोचते हैं हां एक वस्तु ऐसी है जो मेरे से भी निकृष्ट है, विष्टा, स्टूल। तो वो विष्टा को लेने जाता है, तो विष्टा वहां पर पड़ी हुई होती है। जैसे हाथ लगाने जाता है वो विष्टा कहती है ए खबरदार। विष्टा बोलने लगती है खबरदार किसको हाथ लगा रहे हो? वो कहता है मैं उस वस्तु की तलाश में हूं जो मेरे से भी निकृष्ट है। वो कहता है अरे मूर्ख, मैं कभी किसी जमाने में पकवान थी, ठीक है, मुझे देवताओं पर चढ़ाया जाता था, जब तूने हाथ लगाया और तेरे पेट में गई तो मेरा यह हाल हो गया। एक बार तूने मेरा यह हाल कर दिया कि लोग कपड़ा रखते मेरे सामने आते हैं तो नाक पर, अब तू वापस हाथ लगा देगा तो पता नहीं क्या होगा तेरा, मेरा क्या हो जाएगा। तो एकदम से उसको रियलाइजेशन होता है कि मैं कितना अहंकार से भरा हूं। तो वो आप ही सोचो कौन हुआ निकृष्ट। तो छठवा क्या कहा यहां पर, सदा खुश और निरंकारी होकर चलना, मूड ऑफ ना हो, कंफ्यूज ना हो, और परिस्थिति अगर आ जाती है तो क्या करो, उसको उड़ जाओ, क्रॉस कर जाओ, उस पर टकराते नहीं बैठो। बाबा ने कहा है ना, व्यर्थ संकल्प की हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ने की बजाय उमंग उत्साह के पंख, ऐसे कोई स्लोगन था ना कभी, उड़ जाओ, उसको क्रॉस कर जाओ, नहीं है तो बना लो। हाँ, क्रॉस कर जाओ, आगे आगे चले जाओ। तो ये सिक्स्थ एंड देन लास्ट पॉइंट था कर्मयोगी के सैंपल या साकार कर्मयोगी के सैंपल। सबसे ज्यादा बिजी कौन था सृष्टि पर? ब्रह्मा। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी थी? ब्रह्मा की। परंतु ये सब होते हुए भी वो कर्मयोगी के सिंबल थे और सैंपल भी थे, सिंबल चिन्ह। तो साकार ये सब होते हुए भी वो सिंबल थे। और यहां पे कभी अपने आप को करण करावनहार नहीं समझा, क्या समझा? करणहार समझा, और शिव बाबा करण करावनहार समझा। और इसमें बाबा ने लास्ट एक लाइन कही कि चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, कार्य हो, फिर भी ऐसे समझो कि नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। नचाने वाला ऊपर है और हम केवल नाच रहे। होई सोई जो राम रची राखा, दिस इज द लास्ट ट्रूथ, थाई विल शैल बी डन। बाइबल कहती है, जीजस चिल्लाता है और कहता है हे प्रभु जो तेरी इच्छा, जैसा तू चाहे, होई सोई जो राम रची राखा, जो उसकी इच्छा हो। हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस हम चल रहे, हम आगे बढ़ते जा रहे, खुश है, किसी से कोई शिकायत नहीं, क्या क्यों कैसे कब कहा ये सब कुछ नहीं है। शक्तिशाली आत्माओं की वो निशानी है ना, कल की संडे की मुरली में लास्ट निशानी यही है, ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। और जिनके मन में दुविधा है, प्रश्न है, असमंजस है, कंफ्यूजन है, वो शायद शक्तिशाली नहीं है फिर। तो ये सात कदम कहो या सात बातें उस मुरली में थे, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात, ब्रह्माचारी। ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा जैसा आचरण, ब्रह्मा जैसी चर्या। केवल ब्रह्मचारी नहीं हो तुम, क्या हो? ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्माचारी। तो ब्रह्मा का जो आचरण है वो तुम्हारा आचरण है। तो उसका बाप समान बनने की नवीनता लानी है स्वभाव संस्कार में। और एक मुख्य बात, और जो कहा कि हर अमृत वेला बाबा से वरदान लेना है, कौन सा वरदान? निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ये टॉप मोस्ट वरदान है, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है, यही अंतिम अवस्था है। तो अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला ये वरदान लेना है बाप दादा से। दूसरी बात बताई, पवित्रता का व्रत। पवित्रता किसमें? संकल्प में, बोल में, कर्म में, चेहरा और चलन, इन सभी में हमारे बोल में प्यूरिटी के वाइब्रेशन हो। एक एक बोल महावाक्य हो, बाबा ने कहा, साधारण वाक्य ना हो, महावाक्य हो। कब का महावाक्य? भाषण करते समय का नहीं, दिनचर्या का। भाषण करते समय तो महावाक्य अपने आप रहते हैं। पहले से सोचे हुए है, वो ये बोलना है, वो बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, वो महावाक्य नहीं होते। महावाक्य तो चालू होते हैं जब आप कर्म में उतरते हो तब। ये तो बैकग्राउंड है, अभी 9 बजे से पहले लाइव टेलीकास्ट तो 9 से चालू होगा, जब ड्यूटी आवर्स में उतरेंगे तब। हाँ, उसमें भी 2-4 घंटे के बाद थोड़ा और जहां इरिटेट करने लोग आ जाए 4-5 और ऐसे कुछ कुछ प्रश्न पूछे या कुछ कुछ करे तब। तो ये हो गई दूसरी, पहला, फिर दूसरी बात पवित्रता का, तीसरा बताया मुरली, मुरली और संकल्प बोल और कर्म की अलाइनमेंट एक हो तीनों भी। फिर चौथा सफल करना है, अपने घर में आज अपने कमरे की चेकिंग करनी है, आज का कार्य है अपने कमरे की चेकिंग, अपने घर की चेकिंग, अपने सेंटर की चेकिंग। और देखो डिक्लटर, जहां जितना भी पड़ा हुआ है, एक होता है डिक्लटर द रूम और डिक्लटर द माइंड। क्लटर जो भी कूड़ा करकट या बहुत एक्स्ट्रा चीजें जो है वो सब क्या करो, देखो किसी के काम में आ जाए, कोई सेवाधारी, कोई कन्या, कोई भाई, वो दे दो जिसको दे, जितना हमारी चीजें सफल हो जाए अच्छा है, क्योंकि शरीर का ठिकाना नहीं। देखा 800 दिन बाकी है बस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, उसी में दूसरी बात अलाइनमेंट हो गया। फिर इकोनॉमी का अवतार, ये एक नया शब्द बाबा ने बनाया है, ये किसी धर्म में नहीं है, इकोनॉमी का अवतार ये यही है खाली। तो कम खर्च, बाला नशीन। उसके बाद में अगली पॉइंट सिक्स्थ, दृढ़ संकल्प। कौन सा दृढ़ संकल्प? दुखी नहीं होना, उदास नहीं होना, रोना नहीं, मूड ऑफ ना हो, कंफ्यूज ना हो। दुख लेना ये एक बहुत बड़ा विकार है, लेना ही नहीं है, विकार, विकार ही कहना पड़ेगा इसको। जब तक ये नहीं जाता व्यक्ति अचर अडोल नहीं बन सकता। हर आत्मा दुख लेने को विकार नहीं समझती। दुख लेना भी पाप की कैटेगरी में, दुख लेना भी एक हिंसा है, आत्महिंसा। खुद को, आत्मा को दुखी करना कितनी बड़ी हिंसा है। खुद को अतीन्द्रिय वरदान में बाबा क्या करे, तुम जैसी खुशी किसी के पास नहीं है, तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं, तुम बांटो और खुद दुखी हो रहे, उदास हो रहे। आत्महिंसा, आत्मग्लानी, आत्म भ्रष्टाचार, खुद को दुखी करना। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, दुखी होके जीवन, ब्राह्मण जीवन दुखी होके बिता रहे, भगवान के बच्चे और दुखी। कितनी बार मुरलियों में आता है, दुख लेना ही नहीं है किसको, जो करना है करने दो, किसी में भी दुखी नहीं होना है। हर असफलता से कुछ ना कुछ सीखना है। एक असफलता से जब दूसरी असफलता तक पहुंचो तब दुखी कभी नहीं होना, ये किसी ने कहा है। एक असफलता से निकले और दूसरी असफलता में गए, वो टाइम है जब दुखी नहीं होना होता है। तो ये दृढ़ संकल्प करना है। और लास्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा बिजी, आप ये नहीं कह सकते हम बहुत बिजी थे, हम बहुत जिम्मेवारी थी, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 सेंटर संभालने हैं, 5 सेंटर संभालने हैं, या इतनी सेवा है, या इतनी ड्यूटी है, इतने डिपार्टमेंट देखने, इतने लोगों को कंट्रोल करना है, ये प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम, चाहे कुछ भी करना है। ब्रह्मा से ज्यादा कोई बिजी नहीं था, ब्रह्मा से ज्यादा किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तुम्हारी क्या लिंबू टिंबू रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ब्रह्मा समान ये स्मृति रहो कि करण करावनार वो है और हम करणहार हैं। और लास्ट बात, कितना भी बड़ा कार्य हो क्या समझो, नाचने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। ओम शांति।
ब्रह्म